ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एल इसवाज ने बताया है कि सुचारू और निष्पक्ष मतगणना प्रक्रिया के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मतों की गिनती के लिए दिल्ली के 11 जिलों में 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सुश्री इसवाज ने कहा कि 70 विधानसभा क्षेत्रों के फॉर्म 17C सहित चुनाव दस्तावेजों की जाँच की पूरी कर ली गई है। ईवीएम सतत निगरानी में स्ट्रांग रूम में रखा गया है। मतगणना केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस बलों की 38 कंपनियां तैनात की गई हैं। मतगणना पर्यवेक्षकों, सहायकों, माइक्रो पर्यवेक्षकों, सांख्यिकी कर्मचारियों और अन्य सहायक कर्मियों सहित लगभग 5000 स्टाफ सदस्यों को मतगणना प्रक्रिया के लिए तैनात और प्रशिक्षित किया गया है। नई दिल्ली में कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल ने स्किल इंडिया कार्यक्रम को 2026 तक जारी रखने और उसके पुनर्गठन को मंजूरी दी। 2022-23 से 2025-26 तक 8,800 करोड़ रुपए की लागत के साथ इस कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के विस्तार की भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि दक्षिण तटीय रेलवे जोन को कार्योत्तर मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से फ्रांस की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे वहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे और भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी सोमवार शाम को पेरिस पहुंचेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा एलिसी पैलेस में आयोजित रात्रिभोज में शामिल होंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी बुधवार और बृहस्पतिवार को अमरीका यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे अमरीकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। लोकसभा में कल आम बजट 2025-26 पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के धर्मवीर गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट देश के सामने मौजूद कृषि चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहा है। उन्होंने किसानों की आत्महत्या का मुद्दा भी उठाया। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। भाजपा के राव राजेंद्र सिंह ने चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय बजट की सराहना की और कहा कि इसमें गरीबों, किसानों तथा महिलाओं के हितों का ध्यान रखा गया है। तेलुगु देशम पार्टी के दगुमल्ला प्रसाद राव ने कहा कि यह विकसित भारत बजट विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने के लिए बनाया गया है। केंद्रीय कोयला और खादान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयला मंत्रालय कोयला आयात कम कर रहा है और घरेलू उत्पाद बढ़ा रहा है। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि कोयला मंत्रालय कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयला क्षेत्र की प्रगति बहुत आवश्यक है और वह देश की औद्योगिकी और आर्थिक विकास में बहुमूल्य भूमिका निभा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए करीब 5 वर्ष बाद रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कमी की है और इसे 6.5% घटाकर 6.25% कर दिया है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की 3 दिन की बैठक के बाद कल मुंबई में यह घोषणा की। केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कैनरा बैंक के नवंबर 2024 के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें दिवालियेपन से जूझ रही रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े उद्योगपति अनिल अंबानी के ऋण खाते को भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर सर्कुलर के तहत धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने अनिल अंबानी द्वारा बैंक की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर कैनरा बैंक से भी जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। फीफा ने संविधान संशोधन और निष्पक्ष चुनाव कराने में विफल रहने के कारण पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ पीएफएफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।